एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे उपन्यास की दुनिया में उतरेंगे जो किरण देसाई के लिए 2006 में मैन बुकर पुरस्कार लेकर आया,
द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस।
जी, किरण देसाई जो खुद अनीता देसाई जैसी महान लेखिका की बेटी हैं, उनकी परवरिश भारत, इंग्लैंड और अमेरिका के बीच हुई,
और शायद इसीलिए वो पहचान के उन सवालों को इतनी शिद्दत से समझती हैं जो इस उपन्यास की आत्मा है।
बिल्कुल, ये उपन्यास पूछता है कि विरासत में मिले नुकसान का मतलब क्या होता है,
और ये सिर्फ जमीन जायदाद का नुकसान नहीं है।
नहीं, ये पहचान, संस्कृति और अपनेपन का नुकसान है।
और इस सवाल का जवाब खोजने के लिए कहानी हमें ले जाती है 1980 के दशक के कलिम्पोंग,
हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा शहर जहां वक्त जैसे ठहर सा गया है।
जी, कहानी का दिल है चो ओयू नाम का एक पुराना जर्जर बंगला जिसकी दीवारों में उदासी और गुजरे जमाने की यादें कैद हैं।
तो मतलब घर का माहौल ही अपने आप में एक किरदार है, एकदम खामोश, धुंध में लिपटा हुआ।
और इस खामोश घर में रहते भी तो गिने चुने लोग ही हैं।
कौन कौन है?
घर के मालिक हैं जैमू भाई पटेल, एक रिटायर्ड जज जो कैम्ब्रिज से पढ़े हैं।
अच्छा।
और अंग्रेजियत की ऐसी छाप उन पर पड़ी है कि वो अपनी भारतीय पहचान से ही नफरत करने लगे हैं। उनका गुस्सा हमेशा उनकी नाक पर रहता है। उनके साथ है उनकी 16 साल की अनाथ पोती साई, जो कॉन्वेंट स्कूल में पली बड़ी है और जिसकी दुनिया किताबों और कल्पनाओं से बनी है।
और
फिर हैं जज साहब के वफादार कुक और उनका कुत्ता मठ। बस यही चार प्राणी हैं उस वीरान बंगले में।
तो एक तरह से ये बंगला अपने आप में एक द्वीप जैसा है जहाँ सब अपने अपने अकेलेपन के साथ जी रहे हैं।
बिल्कुल, जो बाहरी दुनिया से लगभग कटे हुए हैं।
लेकिन कोई भी कहानी हमेशा एक ही लय में नहीं चलती। इस ठहरे हुए पानी में पहला पत्थर कब फेंका जाता है?
वो पत्थर तब फेंका जाता है जब गोरखालैंड आंदोलन की आग इस बंगले तक पहुंचाती है।
अच्छा।
एक दिन कुछ युवा नेपाली विद्रोही घर में घुस आते हैं। वो सिर्फ सामान नहीं लूटते बल्कि वो जज के आत्मसम्मान पर हमला करते हैं।
क्या करते हैं वो?
उन्हें कुर्सी से बांधकर अपमानित करते हैं और उनकी सबसे कीमती चीज, उनकी बंदूकें छीन कर ले जाते हैं।
और बस यही घटना उस घर की खामोशी को हमेशा के लिए तोड़ देती है।
जी,
ये सिर्फ एक लूटपाट तो नहीं लगती, बंदूकें ही क्यों चुराई गईं? इसमें कोई गहरा मतलब छिपा है ना?
बिल्कुल, वो बंदूकें जज के लिए सिर्फ हथियार नहीं थीं।
वो उनके उस औपनिवेशिक रुतबे का प्रतीक थीं जिसे वो इतने सालों से सीने से लगाए हुए थे।
आपने बिल्कुल सही पकड़ा, उन बंदूकों का छिन जाना सिर्फ एक चोरी नहीं बल्कि सत्ता का हस्तांतरण है,
एक पुरानी अंग्रेजियत में डूबी पीढ़ी से
एक नई अपनी पहचान के लिए लड़ रही पीढ़ी की ओर।
ये घटना उस घर के हर इंसान को आईना दिखा देती है
और उन्हें सोचने पर मजबूर करती है कि इस बदलती दुनिया में उनकी जगह है आखिर कहाँ। और यहीं से देसाई एक बहुत ही दिलचस्प कहानी कहने का तरीका अपनाती हैं।
हाँ, वो कहानी को दो हिस्सों में बांट देती है जो हजारों मील दूर दो अलग अलग महाद्वीपों में घट रही हैं, कलिम्पोंग और न्यूयॉर्क।
इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को एक साथ रखकर वो क्या दिखाना चाहती हैं?
वो दिखाना चाहती हैं कि जगह बदल सकती है लेकिन जड़ से उखड़ने का दर्द एक जैसा ही होता है।
कैसे?
कलिम्पोंग में साय और उसके नेपाली ट्यूटर ज्ञान के बीच एक बहुत ही मासूम और खूबसूरत प्रेम कहानी पनपती है।
पहाड़ों के बीच।
हाँ, चाय के बागानों में घूमते हुए उनका प्यार किसी कविता की तरह खिलता है। शुरू में ऐसा लगता है कि उनका रिश्ता जात पात और वर्ग की सरहदों से बहुत ऊपर है।
लेकिन ये मासूमियत कब तक टिक सकती है जब बाहर की दुनिया में इतना कुछ चल रहा हो? राजनीति कैसे इस निजी रिश्ते पर हावी हो जाती है?
वही इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है। जैसे जैसे गोरखालैंड आंदोलन जोर पकड़ता है, ज्ञान अपनी नेपाली पहचान को लेकर ज्यादा सजग हो जाता है, से अपने समुदाय के साथ हुए अन्याय का एहसास होने लगता है।
जी, अब उसे साई की दुनिया, जो उसे पहले बहुत अच्छी लगती थी, एक अमीर और शोषक वर्ग की दुनिया लगने लगती है।
तो साई के लिए उसका प्यार शर्म और राजनीतिक गुस्से के बीच उलझ कर रह जाता है
और धीरे धीरे उनके रिश्ते में वो दरारें पड़ने लगती हैं जो पूरे समाज में पड़ रही थीं।
तो एक तरफ ये प्यार है जो राजनीति की भेंट चढ़ रहा है और दूसरी तरफ हजारों मील दूर एक और तरह का संघर्ष चल रहा है,
कुक के बेटे बीजू का।
उसकी कहानी तो बिल्कुल ही अलग है।
एकदम अलग, लेकिन दर्द उतना ही गहरा है। बीजू न्यूयॉर्क में एक अवैध अप्रवासी है।
वो उस अमेरिकन ड्रीम की तलाश में गया था जिसके सपने भारत में कई लोग देखते हैं,
लेकिन उसे वहां मिलती है गुमनामी। उसका जीवन रेस्टोरेंट के अंधेरे बेसमेंट, भीड़ भरे कमरों और मालिकों के शोषण में बीत रहा है।
उपन्यास में एक जगह उसे एक शून्य, एक वैक्यूम कहा गया है।
हाँ, वो जीता है पर जैसे उसका कोई वजूद ही नहीं है।
ये एक दिलचस्प विरोधाभास है, जहां कलिम्पोंग के पात्र अतीत के बोझ तले दबे हैं, वहीं बीजू के पास कोई भविष्य ही नहीं है।
देसाई जैसे कह रही हूं कि वैश्वीकरण ने हमें दो ही रास्ते दिए हैं, या तो अपनी जड़ों से नफरत करो जैसे जज करते हैं,
या फिर बीजू की तरह जड़हीन हो जाओ। दोनों ही सूरतों में विरासत का नुकसान तो तय है।
चलिए इन किरदारों की मन की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं।
जज जिमू भाई पटेल से शुरू करते हैं। इतना गुस्सा, इतनी कड़वाहट, आखिर ये आती कहां से है?
उनके इस जालिम स्वभाव की जड़ दरअसल उस हीन भावना में है जो उन्हें विरासत में मिली है।
अच्छा।
जब वो युवा थे और कैम्ब्रिज में पढ़ने गए तो वहां उन्हें भयानक नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। उस अपमान ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया
और उन्होंने तय कर लिया कि अगर सम्मान से जीना है तो अंग्रेजों जैसा बनना पड़ेगा।
जी, तो उन्होंने अंग्रेजियत का एक सख्त नकाब ओढ़ लिया और अपनी भारतीयता को पूरी तरह से नकार दिया।
ये तो बड़ी तकलीफ दे बात है। यानी जो इंसान खुद जुल्म का शिकार हुआ वो ही अक्सर सबसे बड़ा जालिम बन जाता है।
हाँ, अपनी पत्नी के साथ उनका बर्ताव तो इसी बात का सबसे दर्दनाक सबूत है।
वो अपनी सारी नफरत और कड़वाहट उन पर निकालते थे जो उनसे कमजोर थे।
ये सिर्फ जज की कहानी नहीं बल्कि सत्ता का एक मनोवैज्ञानिक नियम लगता है।
और इसी जहरीले माहौल में पल रही है साय, जो शायद कहानी का दिल है।
वो एक तरह से शीशे के घर में रहती है।
मतलब
उसकी दुनिया नेशनल ज्योग्राफिक की पत्रिकाओं और अंग्रेजी उपन्यासों से बनी है। उसे असल दुनिया की कोई खबर ही नहीं है।
और ज्ञान का उसकी जिंदगी में आना उस शीशे के घर पर पड़े पहले पत्थर जैसा है। पर जब वही ज्ञान उसे धोखा देता है तब तो वो घर पूरी तरह टूट जाता होगा।
बिल्कुल, ज्ञान से मिला धोखा उसके भोलेपन को चकनाचूर कर देता है। वो उसे उस सुरक्षित बुलबुले से बाहर खींच लाता है जिसमें वो जी रही थी।
उसे पहली बार एहसास होता है कि उसकी पहचान कितनी उलझी हुई है।
हाँ, और उसका इतिहास कितना खंडित है। वो पहली बार कड़वी हकीकत का सामना करती है।
ज्ञान के बारे में क्या कहेंगे? उसे विलन कहना बहुत आसान होगा, पर क्या वो सच में विलन है?
मुझे तो नहीं लगता। वो तो एक ट्रेजिक किरदार है, एक ऐसा इंसान जो हालातों का शिकार हो जाता है।
वो साई से सच में प्यार करता है, लेकिन
उस पर अपनी कौम के प्रति वफादारी का भी भारी दबाव है। वो प्यार और राजनीति के बीच फंसकर रह जाता है।
तो उसका साई को धोखा देना उसकी निजी विफलता से ज्यादा उस राजनीतिक माहौल की विफलता है
जो इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेता है।
और इन सब किरदारों के बीच कुक एक चट्टान की तरह खड़ा है।
हाँ, वो सब कुछ चुपचाप सहता है, जज का गुस्सा भी और बाहर का हंगामा भी।
सही कहा, वो उपन्यास की नैतिक रीढ़ है। वो उस आम आदमी का प्रतीक है जो बड़ी बड़ी लड़ाइयों के बीच चुपचाप पिस जाता है।
उसकी दुनिया तो बस अपने बेटे बीजू तक सिमटी है।
वो दिन रात बस यही दुआ करता है कि उसका बेटा कामयाब होकर लौटे।
उसका अपने बेटे के लिए जो प्यार है वो शायद इस कहानी की अकेली सच्ची और निश्चल चीज है।
और कहानी का चरमोत्कर्ष तब आता है जब ये सारी उलझने, सारे तनाव अपने चरम पर पहुंच जाते हैं।
हाँ, गोरखालैंड आंदोलन हिंसक हो जाता है, कलिम्पोंग बाकी दुनिया से कट जाता है,
खाने पीने की चीजें खत्म हो रही हैं और हर तरफ डर और अनिश्चितता का माहौल है।
इसी तनाव के बीच ज्ञान अपने राजनीतिक साथियों को चोयू ले आता है।
वो साई को धोखा देता है।
हाँ, शायद शर्म और दबाव में आकर। ये वो पल है जहाँ साई का विश्वास हमेशा के लिए टूट जाता है।
ये तो साई के लिए दुनिया खत्म होने जैसा होगा। जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने उसे सबसे गहरा जख्म दे दिया।
और ठीक उसी वक्त हजारों मील दूर न्यूयॉर्क में बीजू का अमेरिकन ड्रीम भी चकनाचूर हो रहा था।
जी,
बीजू अपना सब कुछ खो देता है, पैसे, पासपोर्ट और सारे भ्रम।
तो वो भारत लौटता है।
हाँ, लुटा पीटा वो भारत लौटने का फैसला करता है, लेकिन एक विजेता की तरह नहीं जैसा उसने सोचा था, बल्कि एक टूटे हुए हारे हुए इंसान की तरह।
और उपन्यास का अंत भी कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है।
नहीं, सब कुछ बिखर गया है। बीजू और कुक का मिलना भी खामोशी से भरा है।
देसाई हमें कोई आसान जवाब क्यों नहीं देती?
शायद इसलिए क्योंकि असल जिंदगी में आसान जवाब होते नहीं है। बीजू जब अपने पिता से मिलता है तो दोनों के पास कहने को कुछ नहीं होता, बस एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास होता
है। और उधर चायोयू में
आंदोलन तो शांत हो गया है पर अपने पीछे गहरे जख्म छोड़ गया है। जज, साई और कुक अपने टूटे हुए घर में एक बार फिर साथ हैं, पर अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है।
तो आखिर में बचता क्या है जब अमेरिकी सपने, क्रांतिकारी राजनीति और औपनिवेशिक शानो शौकत जैसी बड़ी बड़ी कहानियां फेल हो जाती हैं? तो इंसान के पास क्या बचता है?
शायद सबसे बुनियादी मानवीय रिश्ते,
जैसे
कुक का अपने बेटे के लिए प्यार। हाँ, या जज और साई के बीच वो अनकहा सा रिश्ता। अंत में पात्रों के बीच एक नाजुक खामोश सा मेल मिलाप होता है।
उन्हें अपने जीवन के बिखरे हुए टुकड़ों को समेटकर आगे बढ़ना है।
शायद यही वो इकलौती चीज है जो इस नुकसान की विरासत में बची रह जाती है।
अगर हम इन सारी बिखरी हुई कहानियों को जोड़कर देखें तो कुछ बड़े धागे नजर आते हैं ना
जी। उपन्यास के मुख्य विषय क्या हैं?
सबसे बड़ा विषय तो उपनिवेशवाद की विनाशकारी विरासत ही है।
जज का किरदार हमें दिखाता है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक घाव नहीं बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक जख्म है जो पीढ़ियों तक रिश्ता रहता है।
ये आपको आपकी अपनी पहचान पर शर्मिंदा होना सिखाता है।
और दूसरा बड़ा विषय है वैश्वीकरण और जड़हीनता।
बीजू की कहानी आज की दुनिया का सच दिखाती है।
जहाँ पैसा और सामान तो आसानी से सरहदें पार कर जाते हैं लेकिन इंसान फंस कर रह जाता है।
और आखिर में हर पात्र इसी सवाल से जूझ रहा है कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ का हूँ।
उपन्यास में प्रतीकों का इस्तेमाल भी बहुत खूबसूरती से किया गया है। चोयू बंगला खुद सड़ती हुई औपनिवेशिक विरासत का प्रतीक है।
वो भारत में इंग्लैंड का एक टुकड़ा है जो अब खंडर बन रहा है।
बिल्कुल।
और उन बंदूकों का क्या? उनका चोरी हो जाना सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि सत्ता के बदलने का एक सीधा इशारा है ना?
हाँ, पुरानी अंग्रेजीदां पीढ़ी से एक नई अपनी जमीन से जुड़ी आवाज की ओर। वो उपन्यास के केंद्रीय संघर्ष का प्रतीक है।
तो आखिर में ये कहानी हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास और राजनीति की बड़ी बड़ी लड़ाइयां हमारे निजी जीवन में, हमारे घरों में और हमारे रिश्तों पर कितने गहरे निशान छोड़ जाती हैं।
और शायद उस नुकसान की विरासत के बीच उम्मीद की एक ही किरण है, वो है छोटे छोटे इंसानी रिश्ते जो हर तूफान के बाद भी किसी न किसी रूप में हमें थामे रहते हैं।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।